조론이 당기에 사시니 만차 방파선 하시자 구사신 조세이로서 파티타남 파오니 부르스마니스루 नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वान अंगश्यामलिनीषटाभिरमितमन्दितकैर्देवर जाटं जागुरोति संविदधतमपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधाष्टङ्गनिवेशितोज्ज्वलपूजं ध्यायेन्द्वा भक्त्यापि हीनापराधलक्षे कृत्वा श्रीकामाभिमत्ते कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदायै कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्ने अपानिन्मानुभिक्षुमन्दं कृपां बुधिर्ज परदुःखदुःखेशान्तमस्तं प्रभुनाशे श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वर्णरूपः कदा मह्यं ददाति वैपायनो विरक्ता करयाति भाव पुत्रेति तन्मयतया करोति नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्ड मौले यस्या कदा किसी को सनातन गोस्वामी जी ने हम लोगों को जो कोटि कोटि वर्षों में साधन भजन करके अपने से पढ़ करके जो चीज होगी उसको साधु संघ के द्वारा दो मिनट में समझाने की चेष्टा कर एक आदमी अपने से साधन भजन करता रहे लाख जन्म तक अपने आप पढ़ेंगे साधन करेंगे अध्ययन करेंगे अपने आप चिंतन करेंगे कि कीर्तन करेंगे तो लाख जन्म में जो पाएगा, और यदि साधु संग यथार्थ में हुआ लाख जन्म को एक सेकंड के अंदर में उसको पार कर दिया, इतना उसमें शक्ति है। महाप्रभु आए, उनके परिकर लोग आए, तो उन लोगों ने क्या किया, यही किया। लाख जन्म में जो लोग नहीं कर सकते थे, उसके विपरीत जो लाख जन्म में नहीं कर सकता था, हरिदास ठाकुर भी लाख जन्म में जो नहीं कर सकते थे, ब्रह्मा के जन्म में होकर उनको सहज रूप में कैसे कर, वो ब्राह्मण पुष्ट ब्राह्मण पुष्ट अनुकलित हुआ, लोगों के द्वारा उपेक्षित, और महाप्रभु जी ने उसको देख करके उसके ऊपर में ज्ञान बुद्ध पिता की जा रहे थे और दौड़ करके आए, भीड़ को चीर कर, वो बहुत दूर में अपने को घृणित समझ रहा था, घृणित समझ रहा था और उपेक्षित समझ रहा था, इसलिए दूर में ही प्रणाम करके दंडवत किए गए। और महाप्रभु जी दूर से उसे देखा, भीड़ को चीर दिया, उन्होंने ऊपर नहीं देखा, अंतर में देखा। इसका अंतर कैसा है, कौन हमारे मिलने के लिए अत्यंत उद्विग्न है, उत्कंठित है, तो जरूरी है जिसका शरीर अच्छा है, प्रसन्नम करता है, उसी को ही उत्कंठा रहे। उपेक्षित व्यक्ति में हो सकता है कि भगवान से मिलने की उत्कंठा अधिक हो, ये समझेगा कौन, वही समझेगा जिसके अंदर में कुछ है, ये तो समझेगा कुछ नहीं समझेगा। और महाप्रभु से बढ़कर के समझने वाला कौन है, जाकर के गए, उठाया, जोर जबरदस्ती वो भाग रहा था और उसको आलिंगन कर परिणाम बढ़ करके, और बस कृष्णा में मत हो, और सुंदर मधुर सुकुमार यौवन युक्त तो उसका शरीर एक सेकेंड में कितना सुंदर शरीर महाप्रभु की जितनी भी लीलाएं हैं, अरे उनको छोड़ करके देखो रसिकानंद, महाप्रभु के से हुए, महाप्रभु के परिकर लोग, और उनसे जीव गोस्वामी या हृदयानंद, और उससे वे श्यामानंद, और श्यामानंद से वे रसिकानंद, और उन्होंने क्या किया, पशु पक्षी की पतंग जिसको देखा पानी उठाया, कोटि कोटि जन्म में वो साधन के द्वारा कृष्ण नाम के प्रति अनुरक्त हो सकता था, अभी नहीं हो सकता। संत लोग ऐसे ही कोटि कोटि जन्म में, कुछ दुर्भाग्य लोग ऐसे हैं जो अपने साधन के प्रति अधिक विश्वास रखते हैं और संतों के प्रति उतना विश्वास नहीं रखते, वो कहते हैं कि मैं हरिनाम करूंगा, खूब श्रवण करूंगा, वैराग्य से रहूंगा, सदाचार से रहूंगा, इसे अब क्या करेंगे, किंतु भी भजन का भी भाव भी नहीं हुआ, उनकी महिमा अलग। इसलिए जो लोग ऐसे संत हैं, विशेषकर महाप्रभु जी के अंगत वाले हैं, वो लोग इस लाइन में हैं, साधु संतों की कृपा, भगवान कहाँ है कौन देखा, बहुत दूर है, विशेषकर हम लोगों के निकट होते हुए भी बहुत दूर है। और संत यदि है, यदि समझते हैं, अरे ये संसार वाले तो पैसे के लिए भी सब कुछ कर देते हैं, और हम भगवत प्रेम के लिए उनके चरणों की निष्कपट रूप में सेवा नहीं कर सकें, विषय लोग एक कोर्ट में आदमी खड़ा है, खड़ा होगा उसके लिए दिल्ली में चक्कर काट रहा, कहाँ कहाँ और कैसे उसको टिकट मिलती है, इतने इसके बाद में। और संतों के उनके इच्छा के विपरीत काम करेगा। तो लोग भजन करो और भजन करते करते वैसा क्या होगा, फिर नीचे कहां रसा कर के चलो। इसलिए निश्चित होकर के, निर्भय होकर के यदि भजन कोई करना चाहे तो इस जन्म में संतों का, यदि संत कहीं से मिल गए, तत्वज्ञ ऋषि यदि मिल गए, तो ऐसे संतों को भजन चातुरी भी छोड़कर लग जाओ उनकी सेवा, उनके आदेश पालन करने में। प्रभुपाद इत्यादि ने कैसा कहा है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कैसा, भजन हम पीछे करते रहेंगे, अभी तो उनके आदेश पालन नहीं, हम
इस जन्म बिताएंगे
एकदम किसी प्रकार से, और कहीं छोड़ करके नहीं है, बस काल की प्रतीक्षा करते रहेंगे।
तथा माधवता होकर
अपने कर्मों का फल वो करते हैं, ब्रह्मा जी का क्षमा भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद बक्भी विदधन नमस्ते जीवित जब
मृत्युपदे सदा।
संतों के संग में सतान प्रसंगमो विद्य संविद इत्यादि, बस इसी जन्म में तो भाई यही करेंगे और अपने मन से करेंगे, उसमें कोई निश्चयता नहीं। इसलिए यदि सौभाग्य से कोई संत मिल जाए ऐसे भजन पारायण तात्विक रसिक भागवत ज्ञाता चैतन्य चरितामृत ज्ञाता महाप्रभु के भक्त, यदि ऐसा कोई मिल जाए बस विजन में जैसा करते रहें, बस उनके संग में प्रतीक्षा करते हुए हरि कथा में अपने। तो कल हमने वही बताया था, तब तक प्रेम को लोग समझ सकते हैं, ये प्रेम ही अंगी है और उसके व्यवहार जो है बाहरी, ये जो अनुभव कहलाता है। अनुभव बहुत समय में अनुभव देखा जा सकता है, हो सकता है कि प्रेम न रहे ना? प्रेम और कभी कभी प्रेम रहने पर भी अंगी लोग न दिखाई भी पड़े, कोई हर्ज नहीं। इसीलिए वो श्लोक है, यदि चित्त द्रवित होता है तदस्म सारम हृदय बतेदम यदि गृह्यमाण हरिनाम जदाधिकारो
नित्य जलम
गात्र गुहेशु हर्षत, यदि हरिनाम करते समय हरि कथा के समय में शरीर में पुलक भी हो, रोमांच भी हो, आंख से आंसू भी आता है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। अभ्यास इत्यादि के द्वारा ये सब हो सकता है, किंतु यदि हृदय विकृत न हो, हृदय में विकार ना आ जाए, द्रवित न हो जाए, तो इन सब कारते भी कोई भी मूल्य नहीं। और यदि हृदय में विकार हो गया, द्रवित यदि हृदय हो गया, तो वो अपने आप आ जाएंगे, न भी आए तो कोई हर्ज नहीं। रूप गोस्वामी इत्यादि का हृदय विकृत ठीक है, ऊपर से कोई भाव नहीं भी हो सकता है, गंभीर आदमी है ना, इसलिए कोई हर्ज नहीं। इसलिए कारण है कि प्रेम ये अंगी है और उसका बाह्य आचरण इत्यादि जो व्यवहार है, उसके जो अनुभव हैं, ये सब जो हैं ये अंग है। इसलिए मूल अंगी की जरूरत है, प्रेम बढ़ाने की भगवान के प्रति जरूरत है। ये प्रकाशित हो अच्छा है और न प्रकाशित हो तो भी अच्छा है। इस चीज़ को अच्छी तरह से संसार के लोगों में केवल उसके जो उपलक्षण अथवा अनुभव हैं यही केवल होते हैं, प्रेम नहीं होता। इसलिए थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ी होने पर परस्पर परस्पर को मार डालते हैं, जिसको प्रेम किया उसी को मारते हैं जान से, या उसके बुराई के लिए सब कुछ कर सकते हैं, उसे जला सकते हैं, थोड़ा सा मन के भी परिचय, किंतु प्रेम में ऐसा नहीं। प्रेम में सबका क्या रहेगा, जहाँ भी रहे जिस प्रकार से रहे, प्रिया और वो दोनों ही सुखी रहे, ये सब समय बनी रहेगी और ये कृष्ण के छोड़ करके और कहीं भी नहीं रहे। कृष्ण उसका विषय और आश्रय कोई भी जीव हो सकता है। कल इसके संबंध में हमने बताया कृष्ण का, नारद जी कहते हैं कि मैं कृष्ण की इस लीला को मैं प्रणाम करता हूं, विशेष करके इस लीला में अहो वैदग्धी सा मधुर मधुरा भगवत समाकर्षतु उच्चै जगत कृतिन कस्य मनम कुलस्त्रीणां तासां बहुभूवि तदाकर्षणं मधो तथा वाक्चातुर्यं सपते विदितं ताभिरपि जत। थोड़ा सा इसके संबंध में मैंने टच किया था। यहाँ कहते हैं हो भगवान की उस चात्री को मैं नमस्कार करता हूँ। इसका बात का भी एक श्लोक को मैंने प्रणाम किया था किंतु संक्षेप नहीं किया, आज उसी को थोड़ा सा किसके रूप में बताया। भगवान की उस चातुरी को, महाचातुरी को और विदग्धता भरी हुई चातुरी को, विदग्धता मैंने क्या परिहास, यहाँ तो परिहास ही परिहास भरी चतुरता को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा जगत में कौन सा व्यक्ति है जिसको थोड़ी सी श्रद्धा या भक्ति हो और उसको यह भगवान की लीला चातुरी माधुरी और रसिकता उनको मुक्त न करती है? क्या उसी के लिए यहां पर बतला रहे हैं दो चीजों के द्वारा टीका में थोड़ा सा इंगित किए, अधिक तो नहीं थोड़ा सा इंगित। पहले ब्राह्मणियों को, तीज पत्नियों को कृष्ण ने कहा जब वो आई हाल में भर भर करके ले आई रस भरी चीजें चार प्रकार की ले करके और वहां पर खड़ी हुई उतार करके रख लिया। कृष्ण ने कहा देख करके स्वागतम वो महाभागा आश्यताम करवाणी आश्रतां करवाणी स्वागतम वो महाभागा। और गोपियों से क्या कहा स्वागत वो महाभागा प्रियं किं करवाणी का दोनों में कितना अंतर। सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी अथवा विश्वनाथ ठाकुर जी ठाकुर जी ने रसिक न होते तो ये सब आलोचना नहीं कर, दोनों को एक जगह ला दिया, दोनों वाक्यों को दोनों श्लोकों को एक जगह लिया। स्वागत महाभागा आश्रतम किं करवाणि और इनसे कहा स्वागत वो महाभागा प्रियं किं करवाणि प्रजस्य अनामयं क्वचित गुरुतागमन कारण। ये तो गोपियों से कहा और उनसे कहा स्वागतम वो महाभागा आश्रतम कर्माणि किं जन्नो दिदृक्षया प्राप्त उपपन्नम इदम विवर। पहला श्लोक उनसे अब दोनों में देखो थोड़ा सा विचार करते हम देखेंगे जैसे दोनों में क्या अंतर है। कृष्ण जब वो आई द्वीप पत्नियां तो कुछ गंभीर हो श्याम हिरण्य पर्णिम लिए तो है और गंभीर होकर के बैठे थे, हंसा नहीं कृष्ण ने यहां हंस करके नहीं कहा, थोड़ा सा कुछ गंभीर होकर जैसे कोई आदरणीय व्यक्ति के पास में कोई आदमी है तो उसमें कुछ संभ्रम के शरीर गौरव के साथ में जैसे बोलते हैं ना ऐसे इन लोगों के साथ में आश्यता आइए पधारिए बैठिए आश्यता माने यहाँ आइए पधारिए बैठिए क्लांत तो नहीं हो गई खाने में भाग लेकर के तो आई हैं महाभागा, द्विजपत्नियों का नाम महाभागा, महान पतिव्रता। जन्म से ही आप लोग अत्यंत शील स्वभाव वाली और उच्च कुल में जन्मी है, आप साधारण नहीं, माथुर विप्रो की पत्निया और माथुर विप्रो की ही कन्या है महाभागा। इसलिए महान प्रतिव्रता होने के कारण आप लोग महाभागा। आश्रितम सर्वाणी पठाइए, बैठिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए। कर्माणि किम, अब यहां पर कृष्ण इस रूप में पूछ रहे हैं, मैं तो वो कालवर्ता ठा रहा, तो मैं आप लोगों का क्या कर सकता हूं, मैं कुछ तो कर नहीं सकता, आई है मुझे दर्शन करने के लिए, दर्शन करके आ, मैं कुछ कर तो सकता हूं, मैं क्या कर सकता, मेरे हाथ में क्या है करने के, ऐसा मनोभाव। आप लोग महाभागा और मैं कहां ठा रहा, वो ग्वालिया, मैं क्या करूं, मेरे करने लायक तो कुछ है नहीं, आप लोग आई, आप लोग महाभागा हैं, आपका दर्शन मैं करके कृतार्थ हो गया आप लोगों का, उन्हीं के लोगों के लिए कह रहे हैं। जनो दीक्षा, हम तो देखने के लिए आई ना, जो ग्वालिया आया है यहाँ, इसलिए आप लोग आई, या आप आई, या मैं परमात्मा हूं शायद इसलिए तो नहीं आई, तो मुझे तो दर्शन कर लिया ननुवद्धामयि कुर्वन्ति दुःख कुशल स्वार्थ वश, इसकी इस श्लोक की हमने व्याख्या, जगत में वही लोग कुशल चतुर हैं बुद्धिमान हैं जो मुझको दर्शन करते हैं और हमारे प्रति अहैत की अव्यवहिता भक्ति करते हैं। अव्यवहिता मैंने व्यवधान रहिता, मैंने शून्य, और ज्ञान कर्म आदि ऐसी जो भक्ति जो मनुष्य करते हैं आत्मा के द्वारा, क्यों मैं आत्मप्रिय हूं, मैं आत्मा का भी आत्मा हूं, इसलिए ऐसा समझ करते यदि हमारे पास में आए तो ठीक है, मैं प्राणी मात्र के लिए ही, मनुष्य मात्र प्राणी मात्र ही हमको, जो चतुर है वो हमारा भजन करेंगे और जो मूर्ख है वो हमारा भजन नहीं करेंगे। वो कहने जिसे ये सब घर का अपना कर्तव्य छोड़ करके भगे हुए हैं, ये कुछ नहीं है, मूर्ख है, और अपने कहेंगे मैं कर्तव्य का पालन करने वाला हूं। हिरण्यकश्यपु कहेगा कि हमारे समान और कोई नहीं है, प्रहलाद मूर्ख है, बच्चा है शिशु है कुछ विज्ञान नहीं, और विश्व कहेंगे समस्त शास्त्र कहेंगे प्रहलाद महाराज जी यथार्थ में कुशल और बाकी सब बेकार वो बस उनका उनका किया हुआ था जीरो शून्य मूल्य और कोई मूल्य ही नहीं है, कहेंगे ना। प्रहलाद महाराज जी का सभी लोग समर्थन, नारद जी के विचार को सभी लोग समर्थन करेंगे, इसलिए कहते हैं अहतु कर व्यवहिता भक्ति आत्मा प्रिय, मैं समस्त प्राणी मात्र के लिए प्रिय हूं, हमारा जो भजन करता है वही संसार में बुद्धिमान, इसलिए आई अब तुम लोग। अच्छा, उन लोगों के लिए कहते हैं स्वागतम सुआगतम, सुआगतम आपका आना सुखपूर्वक हुआ, मालूम होता है कि सुखपूर्वक ही हुआ, कोई विघ्न बाधा होती तो आप लोग कैसे आती, इसलिए स्वागतम, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग अच्छी तरह से, तभी आपका स्वागत, इसलिए वो महाभागा, आप लोग महाभागा है।
जन्म से तो दुख लेते
हैं, इसलिए महाभागा, इनको किस लिए कहा, यथार्थ में शास्त्र जिसके लिए कहते हैं जीवन उसी का धन्य है जसोमती जी और नंद बाबा इसलिए महाभागा किस लिए पपौ जस्यास्तनम हरि नंद अक्रोध ब्रह्मन
श्रेयैव
महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्य जिन्होंने कृष्ण जो परब्रह्म है उनको अपना स्तन को इसलिए वो महाभाग और वो महाभाग महाभाग किस लिए हैं जिनके आंगन में क्या कर रहे हैं घुटनों पर दौड़ रहे हैं इसलिए ये लोग महाभाग जो भगवान का भजन करेगा वही महाभागा है चाहे संसार भर का मुख्य लोग कहते रहे जैसे ये दुर्भागा है हिरण्यकश्यप के दल वाले रावण के दल वाले कहते रहे हरि किंतु बुद्धिमान जन जितने हैं आज से लेकर के परंपरा से लेकर के ब्रह्मा से लेकर और अब तक के सब लोग कहेंगे उसी का जन्म सार्थक है वही महाभागा है जो भगवान की तो आप लोग हमारे लिए आई हैं हमारी सेवा के लिए आई हैं सबको छोड़ करके आई हैं पति पुत्र भाई बंधु माता पिता सबको छोड़ करके आई इसलिए आप लोग यहाँ पर वहां पर तो कहा कि आश्रताम करवाणी की मैं क्या कर सकता हूं मैं कुछ भी नहीं कर सकता और यहां कहते हैं प्रियम किम करवाणी में आपका मैं प्रिय क्या करूं यहां पर करने में समर्थ होकर समझा रहे हैं मैं कर सकता हूं तो आपका प्रिय क्या करूं आपको जो प्रिय है वही बतलाइए मैं वही करूं यहां पर देखो वहां पर उनको लौटाने की बात प्रथम से ही रख रहे हैं कुछ उपेक्षा उसमें है और इसमें अपेक्षा है दोनों में ठीक उल्टा उनको वहां से हटाना चाहते हैं बस वहीं तक हो गया था देखा और देख करके कहा अब इस जन्म के बाद अब जहां आप दूसरा तुम्हारा जन्म होगा वहीं से तुम्हारा प्रेम होगा ये तो आश्वासन दे दिया किंतु इस जन्म में सेवा का कोई अधिकार नहीं और इसके बहुत से कारण भी दिख रहा है और यहां पर कहते हैं महाभागा प्रियम किम करवाएंगे आपका प्रिय क्या करूं अब उनका प्रिय क्या है गोपियों का प्रिय क्या है वो कृष्ण जानते हैं इसलिए मैं क्या करूं बोलो तो कुछ किंतु वो बोल नहीं रही है चुपचाप खड़ी है फिर उनके लिए जो महाभागा बतलाया और आशतां करवाणी की उनके लिए तो ये कहा अरे देखो मैं जन्म जन्म ब्रह्मचारी ब्रह्म संहिता के अनुसार इनके लिए द्विज पत्नी होते मैं ब्रह्मचारी हूं इसलिए तुम लोगों का यहां से दिन में भी जाना उचित है यहां ठहरना उचित नहीं तुम लोग चले जाओ और यहां पर कहते हैं तुम लोग जो कुछ प्रिय है तुम वही बतलाओ मैं करूंगा प्रजस्य अनामयम तभी चुप रहे कहते हैं क्या प्रजस्य अनामयम किम ब्रज में कोई उपद्रव तो नहीं हो गया और कह करके थोड़ा सा वो उनसे पूछ उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे ब्रज में कोई उपद्रव तो नहीं हुआ ये तुम लोग आ गए तो गोपियां मौन रही कह रही हैं सोच रही हैं ब्रज में कोई विपत्ति आपत्ति होती तो हमसे पहले तो गोप लोग जितने हैं वो लोग दौड़ करके आ गए होते तो वो तो कोई आए नहीं तो ब्रज का ब्रज में उपद्रव कहाँ रहा आप इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सकते और ये चुप रहे कृष्ण ने सोचा जी शायद यही कह रही जैसे तुम लोग आ गई ब्रज के और जो दूसरे थे वो लोग तो आए नहीं तो फिर कहते हैं कृष्ण कहते हैं ब्रजस्य अनामय ब्रज का अनामय कभी नहीं तुम लोग आई है क्वचित, किंतु किस लिए आई मैं सोच समझ नहीं रहा। वो बुलवाना चाहते हैं खूब कृष्ण उनके मुख से, अपने मुख से नहीं कुछ बोलना चाहते। यदि वो बोलेगी तो ये कर, ये मतलब से कर क्वचित। गुरुता आगमन कारण, अपने आगमन का कारण बतलाओ तो भी चुप रहे, कुछ नहीं। उनको तो केवल एक ही शब्द या दो शब्द कहा, तुम लोग लौट जाओ। उन्होंने कहा कि पति हमें नहीं रखेंगे, पुत्र नहीं रखेंगे और कोई भी नहीं रखेगा, सास ससुर माता पिता कोई नहीं रखेगा। कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम लोग जाओ और तुम्हारे पति और सब लोग तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम्हारा आदर करेंगे, इसलिए तुम लोगों का जाना अच्छा है। तो जब उनको भरोसा हो गया कि हम हमारे पति रख लेंगे तो लौट गए। यहाँ पर देखा जैसे ये हम इतना समझाया तो भी नहीं गई, तो फिर रजन ने ऐसा घोर रूपा घोर सत्यता प्रति जात प्रजम नेहम स्थेयम स्त्री भीष मध्यमा और भी कहने लगे रजन ने ऐसा। देखो घोर रजनी अंधकार, अंधकार तो थी नहीं किंतु अष्टमी पूर्णिमा वो कह रही है इसे घोर रजनी कहा है, ज्योत्स्नामय तो रात्रि है, आप घोर क्यों कर रहे हैं। अरे घोर इसलिए कह रहा हूं कि घोर सत्य निषेधिता, घोर सत्य माने जंगली जानवर सब इसमें है, सांप निकलेंगे और सब निकलेंगे, बाघ भी हो सकता है, भालू भी हो सकता है। अरे वहां पर पैल कैसे हैं, सांप वो मारने के लिए कृष्ण को आने विश्वभार अभासु बकासु ये ऐसे ऐसे सबसे भरा हुआ। तो घोर सत्व निषेधिता प्रतिजा, तुम लोग को यहाँ ठहरना एकदम उचित नहीं है, प्रतिजा जल्दी से चले जाओ। नेह स्थेयं स्त्री भी स्मर, अरे मैं ब्रह्मचारी, यदि तुम्हारे माता पिता यदि आ जाए तुम्हें खोजते हुए, फिर लड़कियां होती और वृद्धा होती तो उसमें कोई बात नहीं थी। सुमध्यमाना तुम लोग कौन सी है, सुमध्यमा 54 प्राप्त तुम लोग है, जल्दी से तुम लोग चले जाओ, एक मिनट भी मत ठहरो। रजन ने ऐसा, ऐसा का और ले लो, इधर देखो ऐसा का और ले लो, और घोर घोर पहले था ना, रजनी रजन्या रजनी ऐसा है, रजनी ऐसा अघोर रजन ने ऐसा अघोर अघोर घोर नहीं है अघोर, अघोर मैंने ज्योत्स्ना। कृष्ण यहाँ पर द्वार्थक भाव प्रकाश कर, वहां पर द्वार्थक किसी चीज का प्रयोग नहीं किया, ये दोनों में विभिन्नता है। वहां पर द्वार्थक कुछ भी, वहां पर एक अर्थ और दृढ़ता से एक चीज को ही प्रतिपन्न करने के लिए उनको जाने के लिए क्यों होता है, और यहां पर द्वार्थक जो समझेगा वही समझेगा, अर्थात ये सब समझने वाली है ये सभी समझ ले, इसलिए रजन ने ऐसा अघोर अघोर सत्व हरि मृग कोखी मयूर इत्यादि जो अघोर हैं, अर्थात तो सहज स्वभाव स्नेह युक्त जो हिंसा भाव रहित जो प्राणी है उनके द्वारा ये सेवी प्रतिजात ब्रजम नेह न प्रतिजात ब्रजम न को आगे लगा दिया जाए, न प्रतिजात मत लौटो ब्रज में, ब्रज में मत लौटो। नेह न प्रतिजात प्रजा ब्रज में मत जाओ, स्थेयम अत्र सुमति, यही पर ठहरो। ये छिपा हुआ अर्थ कर रहे हैं और यही अर्थ पीछे बतलाया अक्रू जब आए, उन अक्रू में
उद्धव उद्धव
उद्धव जी आए उस समय में कृष्ण ने उनके माध्यम से ये अर्थ भेजा था इस श्लोक के माध्यम से। अरे हमने कब कहा तुम जाओ, यदि तुम लोग महाभागा है जो भगवान के लिए सर्वस्व प्रत्याग करके आ जाए, भगवान का सब प्रत्याग करके विश्व ब्रह्मांड यहाँ तक कि अपने शारीरिक सुख इत्यादि देह दैहिक सबको भूल करके संपूर्ण रूप से कृष्ण का भजन यदि करता है तो वो महाभाग। फिर जब वो भगवान के पास में आ गया तो नाम निवर्तन थे तत्थाम पर, भगवान के यहाँ जाकर के फिर कोई लौटेगा, कोई भी लौट नहीं सकता है। वार्ता साधारण जो आदमी है उनके लिए कहेंगे भगवान पति का सेवा करना ही जरूर धर्म, और ये सबके लिए परम धर्म, पुत्रों की सेवा करना ये परम धर्म है। यदि नहीं करता है वो आगे बतलाएंगे, मातरम पितरम पुत्रा पात्र पतयश्च विचिन्वन्ति अपश्यन्तु मां कृद्ध बंधु साधसम भक्तृ शुश्रूषणम इष्टीनां परो धर्म हिय अमाया तद्बंधूनां च कल्याण प्रजानां चानुपोषण। स्त्रियों के लिए हमारा ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, स्मृति से लेकर स्मृति शास्त्र पुराण और जितने भी शास्त्र हैं रामायण है महाभारत है सब में स्त्रियों के लिए पतियों की सेवा ही परम धर्म बताया, परो धर्म ही अममाया अममाया निष्कपट रूप से, ये बोलने का भी कुछ कारण है पीछे बतलाएं। तद्बंधुनां च कल्याण्य हे कल्याण्यो तद्बंधुनां च प्रजानां च पोषण, उनके अपने बंधुओं और प्रजाओं के लिए भी, प्रजा माने उनके अनुगत जो जन है जिनका वो पालन पोषण कर, उनका पालन पोषण करना उनका उचित है। यदि पति दुशील भी हो, दुशील माने दुराचारी, दुर्भग हो, दैव का मारा हुआ हो, माने क्या दुर्भागा भी हो, वृद्ध भी हो गया हो, कुछ कर नहीं सकता हो, जड़ो जड़ मैंने क्या पैरालिसिस इत्यादि हो गया हो जड़ जैसा, या बुद्धि के बिना वो जड़ जैसा रहता है, रोग्यो रोगी भी हो, अधमो धन भी नहीं है उसके पास में, पति स्त्री भी न, स्त्री अपने पति को कभी भी
नहीं छोड़ेगी,
कभी भी उनकी सेवा से विमुख नहीं हो, सब समय उनको सेवा, और इसके लिए समस्त शास्त्र उदाहरण है। किसी भी स्थिति में अत्यंत पति को कुष्ठ व्याधि भी हो गई, दरिद्र भी है और वो ब्राह्मणी उसकी सेवा कर रही है अपने पति की, और थोड़ा सा देवताओं एक ऋषि से उसके पति का पैर लग गया तो उन्होंने कहा कि मर जाओ अभी, जिसका पैर छू गया अंधकार में वो अपने पति को लेकर के जा रही थी कहीं, और उसी समय उसके पति का पैर एक ऋषि के सिर से लग गया, अंधकार में दिखाई नहीं पड़ा। ऋषि भगवत चिंतन में था या ब्रह्म चिंतन में होगा, यदि कोई भक्त ऋषि होता तो नहीं अभी संपात करता तो त्रिना दबी सुनिच होता, तो इसलिए जोगी समझो दुर्भाषा का दब, दुर्भाषा महाराज जी के दीक्षित शिष्य कोई होगा तो वो जहाँ हुआ पैर छुआ और उसने कहा आए क्रोध आग बुबला, और बुबला होकर के कहा जिसका पैर हमसे अभी स्पर्श कर गया हमारे शरीर से और हमारा ध्यान भंग हो गया, यह व्यक्ति सूर्योदय होने के तक जहां सूर्योदय हुआ बस मर जाएगा। ब्राह्मणी बोली है हमारा पति मर जाएगा, यदि मैंने पति की सेवा की हो तन मन से अमाया निष्कपट रूप में मैंने यदि सेवा की हो तो सूर्योदित नहीं, हाथ उठा करके कहती है बस प्रतिपदा के बल से बस सूर्य ही उदित रहा है। कोई भी ये अविश्वासी युग बात नहीं। अगस्त ऋषि जी इतना बड़ा समुद्र पी सकते हैं और इतने भारी पर्वत विंध्याचल को ऐसे कह देते ऐसे रहो तो ऐसा ही रह सकता है, हमारे ऋषि मुनि में क्या नहीं संभव, सब कुछ संभव है मंत्र के बल से आराधना के बल से सब कुछ। बस उसका यही हो गया, अंत में ब्रह्मा विष्णु और इंद्र प्रभृति सब देवता लोग आए, उसको मनाया का जो हम नवीन शरीर दे देंगे, जब यह ऐसा प्रलोभन दिया हम उसे फिर बना देंगे फिर बचा देंगे, पर ये ठीक सवेरा होने दो तुम, बस सवेरा हुआ वो मर गया पति, साथ ही साथ में जीवित करके सुंदर शरीर एकदम दे दिया, अब उसको लेकर ऐसे ऐसे सब उदाहरण पड़े। नव दमयंती का है, द्रौपदी का चरित्र है,
पुत्री अनुसूया
उसका
सावित्री सत्यवान
लंका में सुलोचना, सुलोचना का कैसा सुंदर चरित्र है, वो रामचंद्र जी के पास में आई सुलोचना, आई सिर मांगने के लिए, मैं सिर के साथ में पतिव्रता हूं कर्म का पालन करके मैं उसके साथ में जन्म लूं, आप उसे सिर दे। पहले रावण के पास में गई, रावण ने कहा कि हमारे पास तो है नहीं, मैं दे नहीं सकता, इसलिए तुम राम के पास में चले जाओ, क्योंकि राम के पास आपके विरोधी के पास में जाऊं मेरे शील भंग होने का संदेह है मुझे, खबरदार ये संदेह मत करो मत करो, तुम राम के पास में निर्भड़क होकर के चली जाओ, यहाँ पर हनुमान जैसे लोग हैं, यहाँ पर लक्ष्मण जैसा व्यक्ति है जो कि मेघनाथ को मार सकता है, मेघनाथ को कौन मारेगा, जो 14 वर्ष तक अन्न जल नहीं खाया हो और स्त्री का मुख नहीं देखा हो
और भी नहीं
और सोया नहीं हो, ऐसे तुम चली जाओ। वो आई, रामचंद्र जी ने कहा कि देखो ये लक्ष्मण में और मेघनाद में ये युद्ध हो रहा था, यथार्थ में लक्ष्मण में और मेघनाद में युद्ध नहीं था, युद्ध किस में हो रहा था,
उर्मिला सुलोचना,
उर्मिला और सुलोचना में ये युद्ध हो रहा था, क्यों हो रहा था, उन दोनों में तो लड़ाई हो रही थी धनुष बाण से, नहीं उनमें नहीं चल रही थी युद्ध, चल रहा है इनमें, तो मारा गया ये, तो उर्मिला बड़ी हो गई और तुम छोटी, ऐसा बात नहीं, उसका पक्ष जरा दुर्बल था, तुम दोनों में दोनों समान है, उर्मिला से तुम कम नहीं, तुम्हारी ही जीत होनी चाहिए थी या दोनों की जीत होनी चाहिए, किसी की हार नहीं होनी थी, किंतु तुम्हारा पक्ष जो था थोड़ा सा दुर्बल था, वो अन्याय का सपोर्टर था और लक्ष्मण क्या था, न्याय का सपोर्टर था, इसलिए अन्याय का सपोर्टर होने से वो मारा गया, और ये न्याय का भी सपोर्टर और उर्मिला का इधर पतिव्रत, ये पतिव्रत ने उसको बचा लिया और तुम उसको बचा न सके, वो अपने पाप से मारा गया। पतिव्रताओं का के व्यवहार से हमारे समस्त शास्त्र भरे पड़े हैं, इसलिए उनको पतियों की अवश्य में सेवा करनी चाहिए, और उसमें भी बतलाया गया है परमेश्वर के रूप में, ऐसे नहीं परमेश्वर उनको पति को परमेश्वर मान करके उनका उनकी सेवा कर, उनको तो यही कह करके तो भेज दिया, और इनको जब वो कह रहे हैं भर्तु सुशूषणम, तो गोपियां यहाँ पर उत्प्रेक्षा कर रही है, उत्प्रेक्षा मैंने क्या कह रही हैं, ये बात तो आपने ठीक कहा, पतियों की सेवा स्त्री नाम परम धर्म, परम धर्म
सती देवता पति,
हमने तो आप ही को पति माना और किसी को पति माना ही नहीं, और आप कहिए कि आप जगत के पति हैं कि नहीं, आप खुद ही कहते हैं मैं जगत पति हूँ, जगन्नाथ हूँ, सभी तो आप कहते हैं, इसलिए हमारा परम धर्म आप ही की सेवा है, हमने तो कभी उनको पति के रूप में हमने कभी दर्शन नहीं किया, इसलिए हमारा ये परम कर्तव्य है कि आपकी सेवा, आप तो स्वयं भगवान है ना, आप अपने मुख से कहते हैं, दुशील भी यदि पति हो आप तो सुशील हैं, दुर्भगा भी यदि हो आप तो सुभगा हैं, वृद्ध रहता आप तो नौ किशोर हैं, जड़ आप किंतु चेतन हैं, आरोग्य रोग हैं आप, निरोग हैं आप सब समय,